ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम का सत्संग करेंगे और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, चौथा स्कंद हिंदी में चल रहा है। चौथे स्कंद में 18वां अध्याय प्रथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन और इसी क्रम में आज का श्लोक है 22वां, 23वां और 24वां। तो हम लोग 22वें श्लोक को दोहराएंगे। तथा आह्य दंदशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दुदुहुर् बिलपात्रे विषं पयः। तथा हयो दंदशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम् तथा हयो विधाय वत्सं दुदुहुर् बिलपात्रे विषं पयः तथा हयो दंदशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम् विधाय वत्सं दुदुहुर् बिलपात्रे विषं पयः। दोहराएंगे। सर्पानागासतक्षकम् शुकाः सर्पा नागाशतक्षकम् उधाय वत्सं दुदुः बिलपात्रे विषं पयः। माताजी। तथा हयो दंदशूकाः सर्पा नागाशतक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः बिलपात्रे विषं पयः। पायोदंडशुका सर्पा नागशतक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः बिलपात्रे विषम पया। शब्दार्थ तथा उसी प्रकार अह्यः बिना फन वाले सांप, दंडशुकाः बिच्छू, सर्पाः फन वाले सांप, नागाः बड़े सर्प, च तथा तक्षकम् सर्पों के प्रमुख तक्ष को, विधाय बनाकर, वत्सम बछड़ा, दुदुहु दुहलिया, बिलपात्रे सांप के बिल रूपी पात्र में, विषम विष, पयः दूध के रूप में। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की सब अनुवाद। तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दुह लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। पीछे दोहराएंगे, तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दुह लिया। इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं और इस श्लोक में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है। बात यह है कि इस पृथ्वी से सभी जीव अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। भौतिक गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। पयः पानम भुजंगा नाम, यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो इससे उसका विष ही बढ़ता है, किंतु यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तिष्क में ऐसे ऊतक बनेंगे जिनसे वह उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। इस प्रकार भगवान हरेक को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में आता है उसी के अनुसार वह अपना विशिष्ट चरित्र ढालता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहां पर कुछ बहुत ही सूचनात्मक विषय से विषय को दर्शित किया गया है और इसकी गंभीरता को भी समझना बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में बहुत सारी जानकारी है जो हम लोगों को कर लेनी चाहिए। तो आज हम लोग कुछ इसमें प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यहां पर प्रथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, ये पृथ्वी अनादिकाल से जब से सृष्टि हुई है तब से हमारे लिए उपयोगी है। जब भी कोई संकट आता है, कुछ भी होता है, तो पृथ्वी ही हमारी रक्षा के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती है। फिर भगवान अवतरित होते हैं और जीवों की रक्षा करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा पहले भी, भागवत में 3-4 जगह पर पृथ्वी का संवाद है। पहले स्कंद में है धर्म और पृथ्वी के बीच में संवाद। उसके बाद भगवान ने वराह में स्वयं पृथ्वी का उद्धार किया 3 स्कंद में, और उसके बाद 10 स्कंद में 4 स्कंद में यहां पर भी पृथ्वी ही समस्त पदार्थों को वापस देने में सहायक है, क्योंकि सभी पदार्थ उसी के अंदर हैं। बाद में अभी कुछ समय पहले ही ब्रह्मा जी ने 5000 वर्ष पहले और भी उससे पहले पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने अवतार लिया, ऐसा एक कारण बोला है। तो यहां पर पृथ्वी एक्चुअल में जो पृथ्वी है और ब्रह्मा है दोनों की समान आयु है, लेकिन पृथ्वी के बाद ही ब्रह्मा की आयु है। तो पृथ्वी के विषय में हमको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि पृथ्वी आखिरकार कितनी पुरानी है, क्या है, और पृथ्वी में जो प्रलय होता है वो किसका होता है, क्या संपूर्ण पृथ्वी प्रलय में डूब जाती है, ये क्या है। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जिनका नाम है भास्कराचार्य, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने पृथ्वी के विषय में वर्णन करके बताया। क्योंकि कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक लोग मानते थे कि पृथ्वी की आयु 7000 वर्ष है, केवल 7000 वर्ष, और हमारा जो वैदिक ज्ञान है इसके बल पर, हमारे जो वैज्ञानिक लोग कहते थे शास्त्रों के बल पर कि पृथ्वी की आयु 1,97,00,000 वर्ष हो चुकी है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे, बोले नहीं 7000 वर्ष है। लेकिन बाद में थोड़ा और विज्ञान आगे बढ़ा तो नक्षत्रों के अध्ययन करने के बाद उनकी उष्णता के माध्यम से कि उनमें कैसे गर्मी होती है, कितने समय से है, सब उन्होंने यंत्र बनाए, और बाद में उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी तो 1,00,000 के ऊपर की है, पृथ्वी की आयु 1,00,000 वर्ष है। बाद में कुछ समय के बाद में और वैज्ञानिकों को बोध नहीं हुआ, थोड़ा और प्रयास किए तो भूगर्भ वैज्ञानिक पृथ्वी के गर्भ में जाकर के नीचे जाकर के जो पता लगाते हैं पृथ्वी के अवशेषों के माध्यम से, उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि पृथ्वी की आयु करोड़ों में आ गई, 10 लाख से 40 करोड़ पहुंचा दिए। फिर बाद में कुछ समय के बाद पृथ्वी में जो समुद्र है, समुद्र में जो खारा पानी है, उस खारे पानी को लेकर के वैज्ञानिकों ने फिर एक शोध किया जिसमें पता चला कि पृथ्वी की आयु 1 अरब 50 करोड़ वर्ष है। तो वैदिक जो ज्ञान है तो पहले से ही कहा जाए, वैदिक ज्ञान में वैदिक काल से ही वैदिक वैज्ञानिकों ने महर्षियों ने तो कहा कि पृथ्वी की आयु 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो चुकी है, तो ये लोग मान नहीं रहे थे। तो बाद में अब जाकर के जो रेडियम और यूरेनियम होते हैं उनके विघटन से जो अवशेष बचता है उसी शीशा बनता है, उसके द्वारा भी पता लगाया तो 1 अरब 56 करोड़ वर्ष के लगभग इतना तक पहुंचा है, और हम लोग 1 अरब 97 करोड़ वर्ष बोलते हैं। कुछ समय बाद और पता लगाएंगे, है ना, तो इससे यूरेनियम के माध्यम से जो कि 10 अरब वर्षों पुराना है, तो उनसे वो लोगों ने पता लगा लिया कि पृथ्वी की आयु कम से कम 1.5 अरब तो है ही, 1 अरब 50 करोड़ के तो ऊपर ही है। कहां 7000 वर्ष मानते थे, अब जाकर के 1.5 अरब हो गया उनका मानना। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी है और ये जो गोदोहन है, अब आपको ये समझना पड़ेगा इस पृथ्वी में ये गोदोहन कहां पर हो रहा है। तो उन भास्कराचार्य ने गोलोक अध्याय में 62वें अध्याय में एक बहुत अच्छी बात बोली है, उन्होंने बोलते हैं कि ब्राह्मी लय योजन मात्र वृद्धिर नाशो भुवः, ऐसा बोला है भास्कराचार्य ने। आपको पता है दो प्रकार की पृथ्वी की सृष्टि है, एक तो जो भगवान के द्वारा निर्मित होती है, और दोबारा में जो ये क्रम चल रहा है जिस पर सृष्टि होती है वो ब्रह्मा बनाते हैं। इसको समझिए, पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर भी एक योजन मतलब 10-12 किलोमीटर, इतना ही होता है ना योजन, तो 10 से 12 किलोमीटर का होता है एक योजन। तो एक योजन परत है पृथ्वी के ऊपरी, उस परत में ही सारी सृष्टि है उसके ऊपर। एक तो मूल प्रकृति पृथ्वी है, एक ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि को बनाने के लिए वो पृथ्वी। तो जब प्राकृतिक लय होता है या ब्रह्मा जी जब रात्रि में सो जाते हैं तो धीरे 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 पृथ्वी जो बढ़ी थी वो घट के समाप्त हो जाती है, लेकिन मूल पृथ्वी रहती है। पानी में डूबने के बाद भी नहीं कि पानी में मिट्टी जैसे पानी में घुल मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पृथ्वी का जो गोलक है वो रहता है, पृथ्वी अंडे के जैसा है ना, बोलते हैं अंडे के जैसा है, जैसे ब्रह्मांड है ऐसे पृथ्वी भी चपटी है नित्य मुकुंद प्रभु, लेकिन ऐसे में है ना। तो पृथ्वी का शेप बताते हैं वैज्ञानिक लोग, हम तो देखे नहीं, हम लोग तो उसके अंदर हैं, अब बाहर जाएं तो देख लें कैसी है। तो लोग बताते हैं प्रकृति इस प्रकार से थोड़ी सी दबी सी है, ऐसा बोलते हैं। तो वो पृथ्वी में जो ऊपरी सतह है जिस पर समुद्र आदि हैं ये ब्रह्मा जी बनाते हैं, और पृथ्वी भी जो छिपाती है जिन जिन पदार्थों को वो इसी के अंदर छिपाती है जब कोई समस्या आती है। तो इस प्रकार से जब लय होता है ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो उस समय धीरे धीरे जितना ब्रह्मा जी का जिस पर सृष्टि थी वो समाप्त होकर घट जाता है, और बाद में जब फिर ब्रह्मा जी जब जागते हैं तो पृथ्वी तो वापस फिर से वृद्धि होने लगती है। तो जो ऊपरी सतह है उसकी वृद्धि होती है, न कि पूरी वृद्धि नष्ट होकर के समाप्त हो जाती है, ऐसी नहीं होती कभी भी। तो प्राकृतिक लय में भी इस प्रकार का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा जी के द्वारा जिस सृष्टि करने के लिए जिस परत को बढ़ाया गया था वही बढ़ता है। तो इसीलिए वैज्ञानिक लोग अपना, उनका तो आज कुछ मत है कल के दिन कुछ और, किसी बच्चे को देख करके उसके पिता का पता लगाना, ओह ये काला गोरा है, इसके पिताजी भी काले गोरे होंगे, तो ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। लेकिन यदि उसकी माँ से पूछा जाए तो बिल्कुल सही सही पता चलेगा। ऐसे ही इसीलिए जो हमारे शास्त्र बोलते हैं एक बार फिक्स कर दिए, कभी बदलते नहीं है, एक बार बोल दिया कि इतने वर्ष होती है तो होती है, तो उन्होंने पहले ही बोला था, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। कुछ समय पहले बोलते थे चंद्रमा में जल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब देखिए पानी भी निकल रहा है, अब सब कुछ निकलेगा, धीरे धीरे में जीव भी निकलने लगेंगे। इस प्रकार से ये आधार वैज्ञानिक सही गलत दोनों प्रकार का है, कुछ चीजों में सही भी होता है, कुछ चीजों में गलत होता है, वो एक सिद्धांत मात्र है। तो इस प्रकार से यहां पर पृथ्वी ने अपनी दया को प्रदर्शित करते हुए इनके समक्ष में दोहना प्रारंभ किया। तो हम लोग अब इसको समझना चाहिए हम लोगों को कि दोहना क्या है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा कि भगवान कपिल लिए आए, तो कपिल के लिए जब कपिल, अब गाय तो है, गाय तो पृथ्वी बन ही गई, अब ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, तो कपिल को बोलते हैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, विद्या के महारथी, विद्या के स्वामी बोले जाते हैं कि सबसे विद्वान। हमारा जो सिद्धांत भी है कपिल मुनि के आधार पर ही है, सांख्य के, तो इसलिए उस विद्या को प्राप्ति में कपिल को बछड़ा बनाया तो वो ज्ञान निकला। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र योग्य होना चाहिए। जो जिस चीज का आप दोहन करने जा रहे हैं यदि वो पात्र सही नहीं होगा तो दोहन सही मात्रा में नहीं होगा। तो ये केवल हमको प्रथु महाराज के द्वारा दोह करके जीवन यापन कराने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना ही उद्देश्य नहीं है, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा भी है। जैसे पीछे क्रम में बताया जा रहा है कि इस वस्तु की प्राप्ति के लिए ये पात्र बने, इसके लिए ये पात्र बने, है ना, सब अलग अलग पात्र बने, ऐसे ही उस माधुर्य रस और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम कैसे पात्र बनेंगे। यदि पात्र नहीं होगा हमारे पास तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि गाय तो है लेकिन यदि उसको कोई पात्र नहीं होता तो जितनी दुही वस्तुएं थी सब दूर भागती जाती, हटती जाती, निकलती नहीं। गाय को दुहने के लिए पात्र की आवश्यकता भी पड़ती है, पात्र होगा तब ना उसका दूध दुहाकर उसमें रुकेगा, नहीं तो रुकेगा ही नहीं। इस प्रकार से यहां पर 84 लाख योनियों के बारे में बताया है। सब योनियों में अलग अलग कार्य होते हैं, सारे योनियों में सारी इंद्रियां भी नहीं होती हैं। जैसे चींटी है तो चींटी से और छोटे हैं, किसी में आंख नहीं है, किसी में कान नहीं है, किसी में जीवा नहीं है, अलग अलग प्रकार से वो लोग खाते पीते हैं, उनका अलग अलग आहार है। चाटने का जरूरी नहीं कि सारे जीव चाटते ही हैं, सबकी बड़ी बड़ी जीव है, कुछ पी जाते हैं। तो सारे जीवों में कुछ एक इंद्रिय वाले जीव हैं, कुछ दो इंद्रिय वाले हैं, कुछ तीन इंद्रिय वाले, कुछ चार, कुछ पांच। तो इस प्रकार से सारे मिला करके सब जितने भी जीव हैं सब में अलग अलग इंद्रियां हैं, और सारे जीवों में पांच कोष होते हैं, पांच प्रकार के कोष बताए हमारे शरीर में। मनुष्यों में पांच प्रकार के कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इनसे हमारा शरीर बना रहता है। तो यहां पर जितने प्रभुपाद ने लिखा है कि विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं, तो विविध प्रकार की जीवात्माओं में जैसे पेड़ है, अभी पेड़ में क्या रहेगा, पेड़ में केवल अन्नमय कोष है, पेड़ केवल खा सकता है और कुछ और कर सकता है, केवल आहार ले सकता है सूर्य से, वो कहीं चल फिर नहीं सकता है, क्यों, उसमें प्राणमय कोष नहीं है, न वो कुछ सोच सकता है कि मेरे जो फल है यदि वो गिर गया है तो उसके लिए मैं शोक करूं या उनको पालने पोसने के लिए कुछ सोचूं, क्योंकि उसके अंदर विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, मन होता नहीं है, होता है आच्छादित होता है। जैसे मनुष्यों में जैसे गाय है, गाय में विज्ञान कोष होता है, अन्न खाती है, प्राण में कोष है, चलती फिरती भी है, मन भी है, सोचती है, अच्छा बुरा सोचती है भागती है यहां से वहां, उसका मन यदि चंचल नहीं होगा तो रुक जाएगी। अपने बच्चे के विषय में सोचती है, उसको दूध पिलाती है, यदि बच्चा साथ में नहीं होगा गाय का तो दूध देगी भी नहीं। और विज्ञान में कोष, बच्चा मरने पर उसके अंदर दुख का अनुभव भी होता है, मच्छर में होता है नहीं होता है, क्योंकि मच्छर में केवल दो कोष होते हैं, अन्न में, अन्न मतलब पृथ्वी मतलब उसका शरीर जिससे बनता है, शरीर बना और प्राण होने के कारण से वो यहां से वहां चला जाता है। लेकिन कभी आपने देखा कि मच्छर खून चूस करके और अपने अपने जो जो मच्छर से पैदा हुआ हो अंडे जो भी हैं उनको जाके पिलाए, ऐसा वैसा मच्छरों में नहीं होता है। मच्छर की एक अलग प्रकृति है, पैदा होते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसे स्नेह देखा, कभी कोई नहीं देखा है कि मच्छर दूसरे मच्छर को खून चूस करके पिलाए। लेकिन चिड़िए में मनो में कोष विकसित होता है, इसके लिए वो विचार करती है, गई थोड़ा सा कुछ घास लेकर आई या कुछ भी लेकर आई खाने के लिए, दाना चावल दाल जो भी दाना मिल जाए ले जाकर अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मनो में कोष विकसित है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं, तो ऐसे से जीवात्माएं हैं कि जिसमें 5 कोष भी होते हैं और किसी में 1, 2, 3, 4 ऐसे, लेकिन आत्मा 84 लाख योनियों सब में रहती है। आत्मा कोई कहे कि जिसमें मन नहीं है उसमें आत्मा क्या करेगा, ऐसी बात नहीं है। आत्मा 1 कोष से लेकर के 5 कोष तक रह सकता है। जैसे पत्थर है, अभी अहल्या को गौतम ऋषि ने साफ दे दिए, जा तू पाषाण बन जा, पत्थर बन जा। पत्थर बन गई, उसकी आत्मा तो थी ना वहां पर कि वो वहां से अलग हो गई, वही आत्म रूप से हो गई, पत्थर रूप में दिखने लगी। तो शरीर पत्थर का लेकिन उसके अंदर तो थी आत्मा पत्थर के। तो इसका मतलब ये है कि पत्थर सचर और अचर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आपने सुना पत्थर पहले चलते भी थे, उड़ते थे, इंद्र आदियों ने कितने पत्थरों को पर्वतों को काटा भी है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी में अनंत प्रकार के जीवात्माएं हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबके अंदर एक भावना जरूर है, भले अनंत जीव हैं लेकिन सबके अंदर एक बहुत सूक्ष्म भावना विद्यमान है, वो है आनंद प्राप्ति की। उससे कोई नहीं अडिग है, सबके अंदर वो सबके अंदर भरा हुआ है, चाहे चिड़िया हो चाहे ब्रह्मा जी हो, सबको आनंद चाहिए। क्यों? तैतरीय उपनिषद में इसका उत्तर लिखा है, उसमें कहते हैं कि आनंदम ब्रह्मणो व्याजानात आनंदाद्यव खलु इमानी भूतानि जायन्ते। 6वें अनुवाद में लिखा है तैतरीय उपनिषद के सारे जीव आनंद से पैदा होते हैं। भगवान का नाम है ना सच्चिदा आनंद, तो आनंद का अंश है, इसलिए उसके अंदर में वो भावना रहती है उसको प्राप्त करने की। हर प्राणी के सकल नहीं मिलती है, अंगूठे नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज सबका मिलता है। चिड़िया भी आहार निद्रा भय मैथुन करती है, बड़े बड़े पशु पक्षी सब करते हैं, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं उनको भी आनंद चाहिए। सारी क्रियाएं किसके लिए हैं? आनंद के लिए। सारी जीवात्मा अलग अलग है, 84 लाख योनियां अलग अलग है, लेकिन एक चीज सबकी एक ही है, वो है आनंद प्राप्ति। अपने स्वरूप की प्राप्ति हर प्राणी करना चाह रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी प्राणी आप बता दीजिए कि ये आनंद के लिए काम नहीं कर रहा है। कोई भी व्यापार संसार में आनंद के लिए है। इस प्रकार से यहां पर पृथ्वी के विषय में बताया कि पृथ्वी की ऐसी स्थिति है। अब यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जितनी भी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं पृथ्वी में, भौतिक गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है आहार से। अब मैं इसको एक आध्यात्मिकता में जोड़ना चाहूंगा, जो आहार है, प्रभुपाद लिखते हैं कि खाने से जीवों में, मान लीजिए यहां पर उदाहरण लिखे हैं सांप का, सांप ने खाया, सांप ने दूध पिया, बना विष। मनुष्य ने चावल दाल खाता है, शरीर बनता है। कीड़े को आपने देखा, वर्म अर्थवर्म जो होता है, केचुआ मिट्टी खाता है फिर भी उसका शरीर विकसित होता है। हाथी है, ये सब पत्ते खा खा करके इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। तो आहार कई प्रकार के हैं, और सब जितने भी प्रकार के आहार हैं सब की सब मिट्टी है। हम आपको यदि बोले कि आप लोग मिट्टी खा रहे हो तो आप लोग क्या बकवास करते हैं, मिट्टी खा रहे हैं, हम तो चावल दाल खाते हैं। आप बताइए जो चावल है सफेद रंग का कहां से पैदा होता है, मिट्टी से। तो मिट्टी का ही एक सफेद रंग का विकार है। केचुआ अपना शुद्ध मिट्टी खा के जीता है, हम लोग उसमें से उठी हुई कुछ चीज को खाते हैं, है कि नहीं। गंध तो सब में है, पृथ्वी सब कुछ है, मिट्टी भी पृथ्वी है, चावल का दाना भी पृथ्वी है। पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध हो वो पृथ्वी है। तो मिट्टी में भी गंध होती है, चावल के दाने में, तो वो भी पृथ्वी। तो हम लोगों को ऐसे अभिमान में नहीं जीना चाहिए। तो भगवान ने सभी प्राणियों के लिए आहार बनाया, तो इसीलिए साधकों के लिए क्या आहार है। मनुष्यों के लिए साधारण चावल दाल खाने से नहीं होगा, कहीं भी खा लेने से नहीं होगा। जो व्यक्ति आहार शुद्ध नहीं करता है वो साधक कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्यों? तो श्वेत केतु को उसके पिता उद्दालक ने छांदों के उपनिषद में तत्वमसी का ज्ञान किया, तो उस समय उन्होंने बतलाया कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध करने से हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध होगा तो रिमेम्बरेंस पावर स्मृति बहुत शुद्ध होगी, अगर स्मृति शुद्ध होगी तो विस्मृति होगी नहीं, भगवान को भूलेंगे नहीं। कथा सुन करके भगवान के विषय में चिंतन चलता रहेगा लेकिन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। कारण यही है, क्योंकि आहार की शुद्धि नहीं हुई है। कहीं ना कहीं राजसिक तामसिक आहार होता है, इसकी वजह से आहार के तीन भाग होते हैं। एक का मन बनता है, जो बहुत सूक्ष्म भाग होता है आहार का, उससे बनता है मन। जो मध्यम भाग होता है उससे बनता है वीर्य, और जो स्थूल भाग होता है उससे बनता है मल, वो बनकर निकल जाता है। तो आहार यदि आप तामसिक खाएंगे तो आपका चित्त भी तामसी बनेगा, सात्विक खाएंगे तो चित्त भी सात्विक बनेगा। तो कहीं भी दुकान का बाजार का आसा बासा सड़ा गला कैसा कैसा आदमी बनाया है उसको खा जाएंगे जीवा कंट्रोल ना किए बिना, तब जितने बार जब तक खाते रहेंगे तब तक आप समझिए कि साधन में आगे बढ़ेंगे नहीं, अपनी सिद्धि नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन क्या करें, इंद्रियां नहीं मानती हैं, है ना। जिसने जीवा को जीता वो सबको जीत सकता है। तो ये जो पात्र, जब चित्त शुद्ध होगा आहार शुद्ध करने से हमारा, मनुष्यों के लिए जब चित्त सात्विक बनेगा तभी उसमें भक्ति का उदय होगा। जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में इतना तक लिख दिया कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, अंतःकरण की शुद्धि। उसके लिए हम जप करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, ये हमारे अधिकार में है कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर लें। क्योंकि अब प्रेम के लिए तो दौड़ते हैं, प्रेम चाहिए, कृष्णा प्रेम चाहिए, लेकिन कृष्णा प्रेम ऐसा नहीं मिलता, वो हमारी वस्तु है ही नहीं। कृष्णा प्रेम हमारा है क्या? कृष्णा प्रेम तो कृष्ण की वस्तु है, हमारी वस्तु क्या है? हमारा हृदय। हम इसको शुद्ध कर सकते हैं सत्संग से, हरिनाम से, और भी जो साधन है अर्चन आदि से हृदय को शुद्ध इतना मात्र कर सकते हैं। इतना होने के बाद ही प्रेम मिलेगा कि भगवान को देना चाहते हैं कि नहीं, वो उनकी इच्छा है। हमारा कार्य और हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। अब मान लो मैं आप लोगों के लिए कुछ काम करूं, या कोई नौकर किसी स्वामी के लिए काम करे, खूब काम करे, खूब काम करे, अब उसको कितना देना है, पैसा देना कि नहीं देना है, वो उसकी इच्छा है। हमारा काम क्या, हृदय को कैसे शुद्ध करना, वो मात्र है। यहां पर प्रभुपाद ने वही बोला, आहार से संबंधित चीज है, तो आहार शुद्ध करके हृदय शुद्ध किया जा सकता है। एक उपाय है मन को शुद्ध करने का। दूसरा उपाय है भगवान के नाम का अनुष्ठान करना, अच्छे से बैठ करके जप करना, अधिक मात्रा में जप करना, अनुष्ठान के रूप में जप करना। ऐसे हम लोग तो चलते फिरते जप करते ही हैं, लेकिन अनुष्ठान के रूप में, साधना के रूप में। और साधना भी कैसी, आप यदि साधना 23 घंटे 59 मिनट की भी कर लेंगे, और यदि एक मिनट भी गड़बड़ किए तो बस सब खत्म, सारा साधना नष्ट हो जाता है। यदि एक अपराध कर दिए सब गड़बड़ा जाता है मैटर। तो साधना का मतलब है 24 घंटे की साधना, एक थोड़ा देर का नहीं, दो घंटे का नहीं, कि सुबह बस 9 बजे के बाद खेल खत्म, मंदिर का प्रोग्राम समाप्त, अब कुछ नहीं, अब अपना काम शुरू। कोई भी साधक जिसको प्रेम प्राप्त करना है उसके लिए 24 घंटे की साधना है, केवल ये नहीं 2-4-5 घंटे की साधना नहीं, 23 घंटे में बोला ना 59 मिनट तक आप साधना कर लिए, 1 मिनट यदि कोई अपराध कर दिए सब नष्ट हो जाएगा। हाथी स्नान, घंटों नदी में नहा नहा कर शरीर धोया, अब आया बाहर धूल डाल लिया, सब खत्म। इस प्रकार की साधना मतलब 24 घंटे की, 1 घंटे की नहीं। और इस तत्व को समझने के लिए, जैसे यहां पर ये पात्र अच्छे मिलने से पृथ्वी दोहन कर रही है, और पृथ्वी जिन जिन पदार्थों को दोहन कर रही है उससे हमारा फायदा है, कई प्रकार के बीज निकले, कई प्रकार की चीजें निकली। वैसे वेद का उपदेश है कि अन्नम बहु कुर्यात्, अन्न को बहुत बढ़ाए। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है 7वीं, 8वीं और 9वीं अनुवाक में कि अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करे। देखिए कितनी मेहनत से पृथ्वी ने गो बनकर के उन सब पदार्थों को निकाला है, और उसकी हम लोग निंदा करते हैं, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, है ना। तो अन्न की निंदा करने के लिए मना किया है, अन्न को चुराने के लिए मना किया है, अन्न को बांटकर खाने के लिए बोला है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म है, सब अन्न को ब्रह्म तक बोल दिया, अकेले अकेले नहीं खाना अन्न के लिए, इतना तक बोला। तो उसी अन्न को पृथ्वी ने हमारे लिए निकाला है, तो हमको बांट के खाना चाहिए। आहार में सबका अधिकार है, खाने में वो किसी से नहीं छीन सकते हैं। इस प्रकार से आहार शुद्धि एक बात, तो ये जो पात्र बने हैं, ऐसे पात्र यदि हम नहीं बनते तो वो प्रेम प्राप्त कदापि नहीं हो सकता है। कहां से आएगा, भगवान देने वाले हैं चलिए, लेकिन हम पात्र बनेंगे नहीं तो किसमें डालेंगे। दुनिया के किसी भी गुरु के पास चले जाओ, कितना भी बड़ा गुरु हो, भगवान साक्षात स्वयं, जब तक आप पात्र नहीं बनेंगे तब तक वो थोड़ा ना पात्र देंगे आपको, यहाँ आप पात्र ले लो, मैं इसमें तुमको प्रदान पात्रता भी दे देंगे और प्रेम भी दे देंगे, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, ना आगे होगा, कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, कभी सुना है। भगवान केवल उपदेश करते हैं। प्रभुपाल ने एग्जाम्पल दिया, पानी गिर रहा है, कोई बर्तन को ओंधा रख दे तो पानी उसमें थोड़ा ना जाएगा, धूप है पानी गिर रहा है, छाता लगा लेगा तो उस पर पानी कैसे पड़ेगा, है ना। तो जिस लोहे में जंग लगी है उसको चुंबक भी कैसे अट्रैक्ट करेगा। तो पात्रता तो हमको बनानी है, और वो पात्रता का कुछ उपाय शास्त्र में दिया है कैसे बन सकता है। उस पात्रता के लिए केवल एकमात्र संगति है, वही आपको पात्र बना सकती है, अनासक्ति और आसक्ति का त्याग। और वो आसक्ति त्यागती ही नहीं है, छूटी जाती ही नहीं, छूटती ही नहीं है। पात्र नहीं बनेंगे तो प्रेम नहीं हो सकता। कोई गुरु आप पर हाथ भी रख दे, आप जो कुछ करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, थोड़ा ना मन में मशीन कोई लगी है तो यहां बटन दबाए और बस बिल्कुल प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है, ना आगे आप लोग रहेंगे तो ऐसा सुनेंगे कि ऐसा कभी हुआ। जीव पात्र बना है सत्संगति करके, तो उस पर भगवान ने कृपा प्रदान किया है। तो इसीलिए मार्कंडेय पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है कि जब तक 37वें अध्याय में 23वां 24वां श्लोक बहुत अच्छा है कि जब तक व्यक्ति सत्संगति नहीं करता है, दुष्संगों का त्याग नहीं करता है, तब तक वो उत्तम पात्र नहीं बन सकता है। लेकिन वो होता ही नहीं है। तो उसमें बोला है कि संगा सर्वात्मना त्याज्या नचेत सक्यते त्यक्तुम, ऐसा बोला है कि लेकिन उसको जो दुसंग है उसका हमेशा त्याग करना चाहिए। और जब दुसंग का त्याग करेंगे, लेकिन आगे कहते हैं चेत त्यक्तुम न सक्यते, और यदि वो छोड़ा ना जाए दुसंग, तो बोला है कि सदभी सह कर्तव्या, तो जो संग करने की जो हृदय में इच्छा है, संग करने की इच्छा वो नहीं छूट रही है, तो एक काम करो सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। क्यों? क्योंकि उसके लिए वही दवा है और कोई दूसरी दवा नहीं है। ऐसे ही बोला कि कामः सर्वात्मना हेयो, अब कामनाएं बहुत सारी अनादि काल से भोग भोगते आ रहे हैं, तो कामना वासना कहां जाएंगी, है ना, छूटती नहीं है, छोड़ने का थोड़ा प्रयास करते भी हैं, छूटती नहीं है। तो उसमें बोला है कि कामः सर्वात्मना हेयः, कामना का हमेशा त्याग करना चाहिए, लेकिन यदि वो न हातुम चेत न सके थे, यदि उसको त्यागा ना जा सके तो त्यागती ही नहीं है, छोड़ा नहीं जा सकता, तब क्या करें। हर आदमी चाहता है ना अच्छा भक्त बनना, कोई यहां चाहता है कि मैं भक्त ना बनूं अच्छा, लेकिन क्या करें, अंदर में बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी भोग की इच्छाएं भरी पड़ी हैं। क्यों? अनादि काल से अनंत जन्म हुए, सब में भोग भोगते आए हैं, तो क्या करें, एकदम से छूट थोड़ा ना जाएगा। इसलिए वो भोगने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो तीव्र इच्छा जब समाप्त नहीं होगी जब तक, और वो छूटेगी नहीं, इतनी जल्दी छूटेगी नहीं, तो क्या किया जाए। बहुत प्रयास करते हैं भक्त लोग, इसका त्याग उसका त्याग बहुत प्रकार के त्याग करते हैं, लेकिन वो त्याग हो ही नहीं पाता फिर वापस। तो उसके लिए बोलते हैं मुमुक्षाम मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम, उस जो इच्छा को जो कामना है, काम तो होगा इच्छा तो होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि कामना इच्छा तो कभी छूटे नहीं सकती है, तो उस इच्छा को क्या करो, मोड़ दो भोगों की तरफ। तो अब भोग छूटा जाता नहीं, क्योंकि जब तक भोग नहीं छूटेगा, जब तक भोग छूटेगा नहीं उसकी वासना बनती रहेगी, जब तक भोगने की और वासनाएं बनेंगी, कर्म करेगा, जन्म मिलेंगे, जन्म मिलेगा, फिर कर्म करेगा, ये चलता रहेगा। तो जब तक कामनाओं का त्याग होगा नहीं, अब कामना जब त्यागे कैसे, छूटे कैसे, उस वो बहुत कठिन है। तो उसके लिए प्रभुपाद ने बोला कि इच्छा तो है, हर प्राणी में इच्छा रहती है भोगने की, तो वो क्या करें, उस इच्छा को डाइवर्ट कर दें, वो भगवान की ओर लगाए, मुमुक्षाम प्रति। वहां तो मुमुक्षा बोला मुक्त होने की इच्छा के लिए, चलो मैं मुक्त होता हूं, इच्छा तो इच्छा है, चाहे भोग करने की इच्छा हो चाहे मुक्त होने की इच्छा हो देह से। तो उन्होंने बोला मार्कंडेय पुराण में कि मुक्त होने की इच्छा की तरफ लगा लो उस इच्छा को, तो अपने आप वो इच्छाएं सब समाप्त हो जाएंगी। तब जाकर के जब अंतःकरण पूर्ण रूप से कामनाओं का त्याग होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो हम लोग पात्र बनेंगे किसको प्राप्त करने के, प्रेम को। ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं होता कि चलती फिरती वस्तु है, इस संसार की वस्तु है ही नहीं, वो तो भगवान के धाम की वस्तु है, प्रेम तो भगवान का है। और वैसे भक्तों के अनुगत और उनका संग करेंगे तो उसकी गति और तीव्रता से बढ़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। हम केवल अपना अंतःकरण शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध मन से भगवान को पुकार सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो यहां पर पात्रों की बात चल रही थी, इसलिए मैंने ये दो बात बोली कि जब तक हम लोगों का जो उद्देश्य है मुख्य है, ये विषय तो बताया जा रहा है जानकारी के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ी प्रकृति, लेकिन हम लोगों को इस विषय का ज्ञान रखना चाहिए कि हमको भी एक पात्र बनना है। कौन सा? प्रेम का पात्र। तो वो प्रेम भगवान दर्शाएंगे, हृदय जितनी मात्रा में शुद्ध होगा भगवान की कृपा उतनी जल्दी होगी। इस प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सारी बातें नहीं लिखी, यही बात लिखी जी बातें बहुत सारी हैं, और पृथ्वी में बहुत सारे जीव हैं जिनका सब भगवान ही संरक्षण प्रदान करते हैं, सबके अलग अलग आहार हैं, मनुष्यों को आहार जरूर शुद्ध करना चाहिए, यही शिक्षा है इससे। आहार जीव को कंट्रोल करना चाहिए, केवल मंदिर में बने प्रसाद को ही खाएं या घर पर, तो ही हो सकता है। इस प्रकार से यहीं पर मैं वाणी को विराम दूंगा, प्रसाद का समय हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, टैगोर हरि प्रेमानंदे।